हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 15 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो के है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजसव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वर। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मर्ति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयत्वमसतो अकृतवेषु कृत्या। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसां महत्तामपि कौरव्य वित्तयैकान्तिकनिष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा उस्तुति। तो ब्रह्मा जी आज भगवान के नाम की अतुलनीय महिमा बता रहे हैं कि भगवान का नाम ही जीव मात्र को भगवान के धाम तक लेके जा सकता है और वही हमारे अंदर योग्यता प्रदान कर सकता है कि हम भगवान की शरण में जा सकें। एकमात्र यही एक रास्ता है जो किसी की योग्यता को नहीं देखता, कोई कितना ही बड़ा पापी हो या किसी भी भाव को भाव से जिस तरह से भी नाम जप कर रहा है भगवान उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमला सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगसे विवश प्रगृह्णन्ति तेनैकजन्मशमला सहसैव हित्वा संयान्त्य प्रावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। शब्दात् यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि, यस्य मन जिस भगवान के अवतार यानी अवतार गुण कर्म उनके दिव्य गुण उनके कार्य विडम्बनानि सभी रहस्यमयी है। मतलब जीव अपनी बुद्धि से ना तो भगवान के नाम गुण और ना ही लीलाओं को समझ सकता, सब विडम्बनीय है और सभी रहस्यमय है। लेकिन फिर भी हमें तो केवल एक ही काम करना है, नामानि ये मतलब उनके जब नाम का दिव्य नाम का असु विगमे यानी इस जीवन को छोड़ते समय भगवान भी कहते हैं ना अंत काले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं नामानि ये सुविगमे, मृत्यु के समय जीव के अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती, बहुत दुखी होता है जीव और बहुत पीड़ा में होता है। तो उस पीड़ा में यदि विवश्या गृणंती, विवश्या मतलब बहुत ही दुख के कारण स्वतः उसके मुंह से गृणंती मतलब आवाहन करते हैं, जैसे पीड़ा में ना सब कोई मुख से कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल रहा होता है, कोई बोलता है हे मैं मुझे दुख हो रहा है आ ओ, इस तरह से कुछ है ना शब्द निकल रहे होते हैं। लेकिन उस दुख में उस पीड़ा में यदि मुख से ये निकल जाए ओ कृष्णा, बस काफ़ी है, नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति, दुख के समय तकलीफ के समय कष्ट के समय या संकट के समय मुख से बस भगवान का नाम निकल जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समझो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हर वक्त प्रैक्टिस करनी चाहिए, कभी हमको दुख होता है तो हमको कैसे दूसरों को भला बुरा कहने का दिल करता है, उसकी वजह से हुआ, कुछ लाभ नहीं होने वाला, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, हमारे अपने कर्म हैं और इन कर्मों को ख़त्म करने का केवल एक तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के गुण भगवान के कर्म और भगवान की लीलाओं को समझना कठिन है, उनको श्रवण करते रहें और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, जीवन सफल हो जाएगा। आगे कहते तेनैक जन्म शमलम सहसैव हि तेनैक, अर्थात ते मना वे, अनेक मतलब अनेक, जन्म मतलब जन्म, शमलम यानी संचित पाप, हम लोगों ने अनेक जन्मों में अनेकों पापों को संचित किया है, हम हर सांस के साथ अपराध कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम तो भगत हो गए हमसे अपराध नहीं हो रहा है, हम तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, ना चाहते हुए भी जब तक जीव रहता है ना जीता है ना तब तक जीव अपराध करता रहता है, हर एक सांस के साथ ना जाने कितने जीवों की हत्या करते हैं, चलते हुए ना जाने कितने जीवों को मारते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दिन में कितने हत्याएं करते हैं। तो लेकिन हम उनसे बच भी नहीं सकते, जो कुछ है वो ऐसे ही चलेगा, लेकिन फिर भी ताए नए कजन्म शमलम सहसैव हित्वा, सहसैव अर्थात तुरंत एवं निश्चय ही हित्वा यानी त्याग कर, वो सारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे जब हम प्रेम से भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संयाति मतलब प्राप्त करते हैं, अपावृत यानी खुली, अमृतम यानी अमरता, तम उस अजम अजन्मा की प्रपद्ये में शरण लेता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे भगवान जो जिनके केवल नाम मात्र से जीवों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव जो है वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, ऐसे भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत ही धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान संसार में आते हैं ना, तो काम तो वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, है ना। वैसे ही वो सुबह उठते हैं, फिर जिस तरह से एक साधारण ग्वाला जाता है वन में अपनी गैया चराने के लिए, वहाँ पर भोजन खाता है और फिर घर पे आता है, कुछ नटखट कार्य करता है, माता उसे डांटती है। तो भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण है जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। सब घरों में ऐसे होता है, हम लोग भी देखते ना अपने बच्चे को, हम बोलते हैं देखो कृष्णा भी कैसे मस्ती करता था, ये भी कृष्णा की तरह ही नटखट है, और कृष्णा कैसे यशोदा मैया को तंग करता था, तो ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे, वे मंच पर अभिनेता के समान है। मंच यानी कोई स्टेज है और उस पर भगवान ने कार्य करके दिखाते हैं, तो अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। उसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं, वे ऐसे भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो वो कार्य करते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। श्रीमद् भगवद गीता 4.14 में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए होते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पत्ति नमे कर्म फल स्प्रिहा, ना ही तो ये कर्म फल मुझे बांधते हैं और ना ही मैं कर्म फलों की उपेक्षा करता हूँ। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वे अपनी इच्छा मात्र से, भगवान सर्वशक्तिमान है, वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आदि दैवक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र है, जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। ये श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देखने में तो भगवान जो है वो साधारण से यशोदा के पुत्र की तरह से भूमिका निभाते हैं, लेकिन उस भूमिका निभाते निभाते कुछ कार्य वो ऐसे करते हैं जो कि कोई साधारण जीव नहीं उठा सकता, लेकिन वो कार्य भी उनके अनुकूल, उनके पराक्रम या उनकी शक्ति के अनुकूल नहीं होते। जैसे गोवर्धन उठाना भगवान की कोई शक्ति का प्रमाण नहीं है, क्योंकि भगवान तो केवल अपनी सांस से पूरे ब्रह्मांड को, अपनी सांस में एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड भगवान की, केवल सांस से जो हवा निकलती है ना, पूरे ब्रह्मांड उसके अनुसार उस सांस के हवा के बल पर तैर रहे होते हैं। तो भगवान ने यदि एक छोटा सा उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा गोवर्धन उठा लिया, तो कोई भगवान के पराक्रम का कोई ये प्रमाण नहीं हुआ। जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, बहुत शक्तिशाली हो, और उसे आप कहो कि भाई ये 1 किलो का बाट आप मुझे उठा कर दिखाओ, तो ये वास्तव में उसकी शक्ति का अपमान है। 1 किलो का अगर कोई पत्थर वो उठा भी लेता है तो कौन सा बड़ा पराक्रम। लेकिन फिर भी भगवान जो है वो साधारण व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं और अपने भक्तों के साथ अपने प्रेम के, स्नेह के संबंध को वो दर्शाते हैं और आदि दैविक शक्ति को भी दिखाते हैं। इस तरह से भक्त कितना प्रसन्न होते हैं और उनको गोवर्धनधारी का नाम भी देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र है, जिस तरह कि मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है। तो ये केवल अनुकरण है, लेकिन फिर भी किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना के साक्षात उनका। तो भगवान के इन कार्यों को बार बार स्मरण करना चाहिए। वास्तव में भगवान ये कार्य करते ही इसलिए हैं कि हम बार बार उनको स्मरण करें, बार बार याद करें कि देवताओं के राजा इंद्र, वो भी यदि आपको नष्ट करने के बारे में सोच लें और प्रलय की आंधी के जैसे वो वर्षा करना शुरू भी कर दे, तो भी कृष्ण आपके साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये संसार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भला क्या बिगाड़ेंगे, जब बड़े से बड़े देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो कृष्ण की शरण में आते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं उतनी ही शक्तिमान है जितना कि साक्षात भगवान, हम जो ये भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं ना, आप मत सोचना कि ये तो हमें पता है, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के जो कार्य हैं वो विडम्बनीय है, भगवान का नाम तो कितना पवित्र करने वाला, ये तो हमको पता है, जितना भी हमको पता होता है, लेकिन उसको कितना हम रियलाइज कर पा रहे हैं। क्या हम नाम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये साक्षात भगवान है, इसके अंदर कितना पावर है, अभी तक अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, जैसे जैसे नाम लेते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये हमारी चेतना को पवित्र करेगा, और हमारी चेतना जैसे जैसे पवित्र होगी वैसे वैसे हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ते जाएंगे, और फिर हमको ये नाम केवल नाम नहीं लगेगा, अभिनत्वान नाम नामिनु, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण की लीला और कृष्ण के साक्षात स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। अब जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे ना, फिर पता है जैसा आनंद ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे कृष्ण के साथ खड़े होने में आता है ना, उतना ही आनंद जीव को ये कथा श्रवण करने के उपरांत आता है जब उसकी श्रद्धा पक्की हो जाती है। जितना आनंद गोपियों को कृष्ण के साथ रास खेलने में आता है ना, उतना ही आनंद इस प्रसंग का श्रवण करने में आता है, क्योंकि साफ साफ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। और आगे कहते हैं, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया और इससे वे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो गया उसको। तो उसने तो भगवान का नाम लिया भी नहीं था, उसने तो भगवान के नाम का रखा हुआ अपने पुत्र को स्मरण किया था, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पर बताया गया, नामानि येसु विकमे विवशा गृणन्ति, बस किसी भी तरह से ये नाम मुख से निकल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। जब अपने पुत्र के मोह में भी उसने नाम यदि भगवान का लिया तो भी उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई और भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो आप सोच सकते हैं, जब हम जान बुझ के कि कृष्ण का नाम है और इसी से हमारा कल्याण होगा, यदि इस श्रद्धा के साथ इस नाम को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं कृष्णा हमें अपना लेंगे, अवश्य अपनाएंगे। हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए इन शब्दों के ऊपर कि केवल भगवान की कथाएं श्रवण करने से और इस पवित्र नाम को जप करने से ही हमारा कल्याण होगा, हमें कृष्ण प्राप्ति होगी। आगे ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि आप तो इस विराट जगत, ये जो विराट जगत है उस वो एक वृक्ष की तरह है और आप इस भौतिक प्रकृति के तीन स्वरूप में विस्तार करते हैं और तीन गुणावतार उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, शिव जी और स्वयं आपके स्वरूप का एक अंश विष्णु भगवान के स्वरूप में प्रकट होते हैं और संसार को सृजन पालन तथा संहार करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान को ये कहकर स्तुति करते हैं कि आपके ही कारण इस संसार को बार बार सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। इसलिए तस्मै नमो भगवते भुवन ध्रुमाय, सारे लोगों के आप ही पालन करने वाले हो, आप ही उनका संहार करने वाले हो, आप ही उनका सृजन करने वाले हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वे कहते हैं युवा अहम च गिरीशश्च विभु स्वयं च सिद्युद्भव प्रलय ही तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद विवृद्ध एक उरु प्ररोहम् तस्मै नमो भगवते भुवन ध्रुमाय युवा अहम् च गिरिश च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हि तव आत्ममूलम् भित्वा त्रिपाद विवृद्ध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन ध्रुमाय यो वा, यो मना जो वा मना निश्चय ही, अहम च गिरीश विभु स्वयं च, अहम यानी मैं, गिरीश यानी शिवजी, विभु यानी सर्वशक्तिमान, स्वयं मच स्वयं विष्णु स्वरूप में, यानी ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जी के स्वरूप में स्थित युद्भव प्रलय हेतव, स्थिति अर्थात पालन, उद्भव अर्थात सृजन, प्रलय अर्थात संवार, हेतव अर्थात कारण, आत्ममूलम यानी स्वतः स्थित, और भित्वा त्रिपाद व वृद्ध एक उरु प्ररोहस, भित्वा अर्थात भेद कर, त्रिपाद अर्थात तीन तने, विवृद्धे यानी उगा, एक उरु प्रहोह, एक माना अद्वितीय, उसके जैसा और कोई नहीं। उरु माना अनेक, प्रहरोह अर्थात शाखाएं, यानी वो एक ही हैं और बाकी सब जो हैं उनसे विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। इसलिए तस्मय नमो भगवते भुवन ध्रुमाया, तस्मय उसे नम नमस्कार करता हूं भगवते यानी भगवान को, भुवन ध्रुमाया अर्थात लोक रूपी वृक्ष को। ये भगवान जो हैं वो लोक रूपी वृक्ष के तने हैं और बाकी जो कुछ हैं वो सब शाखाओं की तरह हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं, जड़ हैं। हाँ, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, भुवन ध्रुमाया यानी ध्रुमाया का मतलब वो जड़ हैं। और यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में इस मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकलता है। यानी भगवान जड़ हैं और उसके बाद तीन तने निकलते हैं। उसके तीन तने कौन से हैं? एक से सृजन होता है, एक से संहार होता है, एक से पालन होता है, यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी। तो ये सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकलता है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और सब कुछ आपके ही कारण हो रहा है। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं विराट जगत मोटे तौर पर तीन जगतों में उच्चतरम, निम्न तथा मध्य लोक में विभाजित है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है, उसमें तीन, उसको हम बोलते हैं तीनों लोकों में। तो ये तीन लोक है, यानी कि एक तो उच्चतर है ऊपर के लोक, मध्य यानी सेंटर पृथ्वी, और निम्न मतलब नीचे के लोग, इस तरह से विभाजित है। तब परम मूल स्वरूप और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है केवल कारण अथवा भगवान की शक्ति है। जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है और इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में हुई है। माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। केवल भगवान के अध्यक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। दिख रहा है, ऐसा होता है कि ये सब कुछ भौतिक प्रकृति के कारण हो रहा है। ये सूर्य, चंद्रमा, ये वृक्ष, फल, ये भौतिक जगत, सब ऐसा लगता है ये सब बाई नेचर हो रहा है। लेकिन ये नेचर है किसके अध्यक्षता में, कार्य किसके कर रही है? भगवान ही इस संपूर्ण भौतिक प्रकृति के अध्यक्षता है, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो केवल भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। कभी हमको दिखता है कोई बच्चा पैदा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये प्रकृति के कारण माता के अंदर ना बीज पिता ने डाला और जिसके कारण उसका जन्म हुआ। हमको दिख रहा होता है कि हम खाते हैं तो वो पचन होता है, तो हमको ऐसा लगता है बाय नेचर बस जो खाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। या फिर समय आता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं भाई उसकी आयु समाप्त हो गई, तो कुदरत ऐसा कानून है कि जीव जो पैदा होता है वो मर जाता है। लेकिन ये सब किसके कंट्रोल में है हमें ये सोचना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं साफ साफ कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि हर एक कारण समस्त कारणों के कारण भगवान ही हैं। भले ही हमको लग रहा होता है कि भौतिक प्रकृति समस्त सृजन पालन तथा संहार का कारण होती है, लेकिन भगवान पालन सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु ब्रह्मा तथा शिव इन तीन रूपों में करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण के इन तीन प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यदि भी वे भौतिक प्रकृति के में पालन के निमित्त है, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अन्य दो ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु के जितने ही शक्तिमान हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं, वो भगवान के ही आदेश के कारण इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा और शिव जो हैं, वो भी विष्णु जी की तरह ही, विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, शिव और ब्रह्मा जी भी सर्वशक्तिमान हैं, किंतु भौतिक शक्ति के अधीन है, मतलब उनको गुणों को ग्रहण करना होता है। ब्रह्मा जी जो हैं, वो रजोगुण को ग्रहण करते हैं तभी वो सृजन करते हैं, और शिव जी जो हैं वो तमोगुण की अध्यक्षता है तभी वो संहार करते हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद किंतु भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं, वो भौतिक शक्ति के अधीन हैं। तो भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवता द्वारा नियंत्रित किए जाने के विचारधारा, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है ना, वो बहुत सारे देवी देवता मिलकर नियंत्रित कर रहे हैं। नहीं, ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये विचारधारा जो है मूर्ख सर्वात्मवादी की मन की गंदी उपज है। ये को इसमें कोई तथ्य नहीं है कि सारे देवी देवता मिलकर संसार को चला रहे हैं। नहीं, एक अकेले भगवान जो है वो सारे संसार का सृजन पालन और संहार कर रहे हैं, और उन्होंने ही अपने इस कार्य को इन तीनों गुणा अवतारों को सौंपा हुआ है। तो ईश्वर अद्वय है और वे समस्त कारणों के कारण है। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। जैसे एक गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी के आज्ञा के अनुसार सारे जितने वर्कर्स होते हैं वो कार्य करते हैं। उसी तरह यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। तो किस तरह से भगवान जो हैं वो सबको कार्य डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि लक्ष्मी माता को धन का डिपार्टमेंट सौंपते हैं, सरस्वती माता को एजुकेशन का डिपार्टमेंट सौंपते हैं, इंद्र जी को वर्षा का डिपार्टमेंट सौंपते हैं, वायुदेव को, पवन देव को वायु का डिपार्टमेंट सौंपते हैं। तो इस तरह से कार्य तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सबका कंट्रोलर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण यथारूप वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवत गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की हैं, और जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म विष्णु है। वैकुंठ लोक की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक वृक्ष को जैसे भौतिक जगत को वृक्ष की तरह बताया है ना, तो उसी की तरह श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेदवि। कि एक ऐसा वट वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और वैदिक मंत्र जिसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वही वास्तव में वेदवित है। तो पूरे वृक्ष को जानना, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसी वृक्ष के बारे में बताते कि ये जो मूल है इस वृक्ष का, जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं, वो भगवान हैं। यहाँ जैसे बताया गया ना कि जड़ जो है वो साक्षात परब्रह्म है, सत्य है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है इस भौतिक जगत में, सिर्फ और सिर्फ उस वृक्ष का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब उसका खाली एक अक्ष दिख रहा है। सिर्फ वास्तविक वृक्ष तो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म विष्णु है। तो वास्तविक वृक्ष जो है वो वैकुंठ लोक की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है। असली वृक्ष कहाँ है, भगवान के लोक में है। और भौतिक प्रकृति में क्या है, केवल उस वृक्ष का प्रतिबिंब है। इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत के ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है वो झूठा है। यानी कि ब्रह्म के अंदर कोई विविधता नहीं होती, कुछ प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, भगवान तो शून्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते वो झूठा है, क्योंकि भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंब वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं हो सकता। तो ये क्यों सत्य नहीं है, क्यों झूठा है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है ना वो सब उसी रियल वृक्ष का प्रतिबिंब है। मतलब उसी का ही अगर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर के सामने हूबहू आपके जैसी शक्ल जो है वो आईने में दिखती है, लेकिन वो क्यों दिख रही है, क्योंकि एक ऐसा ही इमेज उसके सामने खड़ा है ना। तो इसी अगर उसका कोई इमेज होता ही नहीं, वो अगर निर्विशेष होता, उसका कोई स्वरूप होता नहीं, तो मिरर में भी नहीं दिखता। जैसे आप अगर समुद्र में जाते हो, एक दरिया होता है, पानी ठहरा हुआ होता है, और ऊपर आकाश में सूर्य दिख रहा है, तो सूर्य का इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, वो वाटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं होता। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो वास्तविक जगत में है, वो सारी विविधताएं, वो सारा प्रेम, वो सारा आकर्षण, वो जो इस भौतिक जगत में आपको दिख रहा है ना, वो सब आध्यात्मिक जगत में है। फर्क क्या है कि वो आध्यात्मिक जगत में सारा का सारा प्रेम, सारा का सारा आकर्षण वो केवल भगवान के लिए है, और इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा प्रेम आकर्षण भौतिक जगत की वस्तु और व्यक्तियों के लिए, हमने अज्ञानता के कारण उस प्रेम को भगवान की, जो भगवान के लिए है, जो रियल है, वो भगवान को देने की बजाय यहाँ संसार में अलग अलग जीवों और वस्तुओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ लोकों की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में विस्तारित वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंब वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत के ब्रह्म समस्त विविधताओं से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि भगवत गीता में वर्णित प्रतिबिंब वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधता से पूर्ण है, और भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ है। असली तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, लेकिन मिथ्या वृक्ष असली वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिवजी की ओर से असली वृक्ष रूप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में सारे जीव जो हैं वो मूर्खता के कारण अपने ही बुद्धि से अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, संतुष्ट करना। असंतुष्टि अतृप्ति प्रत्येक जीव को रियलाइज होती है। जीवन में हम देखते हैं, हम सब सोचते हैं कि हम आनंद से नहीं हैं, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, संसार हमें तृप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान के आदेशों अनुसार भगवान की भक्ति करके आनंदित नहीं होना चाहते हैं, बल्कि संसार में अपनी योजनाओं को सफल करके आनंदित होना चाहते हैं। और हमने ये जिद पकड़ ली है कि इस संसार से सुखी होके दिखाएंगे, और भगवान ने पहले ही बता दिया अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। बस गड़बड़ यहीं पर है कि जीव भगवान की इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो तभी आनंद आएगा, और हम तो जिद पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान तुम कुछ भी बोलते रहो, हम तो इस संसार में आनंदित होके दिखाएंगे। तो इसी बात को ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर रीति से बताते हुए कहते हैं, लोको विकर्म निरता कुशले प्रमाता कर्मण्ययम् तव त्वदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवा निह जीविताशाम् सद्यश्चिनत्य निमिषायन स्तुतस्मै लोको विकर्म निरत कुशले प्रमात्त कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवा निह जीविताशाम् सद्यस्य नित्य निमिषायन स्तुतस्मै लोको विकर्म। लोको मतलब सामान्य लोग, जो हम जैसे साधारण लोग हैं वो क्या करते हैं, विकर्म अर्थात अविचारित कर्म में जो भगवान ने मना किया ना वही कार्य करते हैं, निरता उसी में लगे रहते हैं कि संसार में कुछ करूं और आनंदित हो जाऊं। कुशले लाभप्रद कार्य प्रमत्त लापरवाह कर्माणि यानी कर्म में अयम यानी यह त्वत यानी आपके द्वारा उदते घोषित भवत आपकी अर्चने पूजा में स्वे यानी अपने जो यह माना जो तावत जब तक यहाँ श्री यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म निरत कुशले प्रमत्त वो सदैव लापरवाही के भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। कर्मणि अयम त्वत उदिते जो आपके द्वारा बताए गए कर्म हैं उसकी लापरवाही करते हैं, आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, और अर्शने स्वे और स्वयं है ना अपने अपने पॉइंट ऑफ विजन से जो उनको अच्छा लगता है अपने अपने भाव से अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं. और यस तावदस्य बलवानी है जीविताश. यस मना जो, तावत यानी जब तक, अस्य मना सामान्य लोगों का, बलवान यानी अत्यंत शक्तिमान, यह जीवित आम आशाम यानी जीवन संघर्ष. तो जब तक वो इस भौतिक जगत में जब तक उनके अंदर बल होता है, शक्ति होती है, उसी तरह से पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं. कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने बोला है कि आप माला करोगे तो आपको कितना भगवान की कृपा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, आनंद मिलेगा. वो तो यही सोचते हैं कि संसार में हम लोग खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और ये सब करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें, उसी से सुखी होंगे. तो ये पूरा जीवन इसी से ही वो संघर्ष करते रहते हैं. लेकिन सद्य छिनत्य निमिषाय, सद्य मना प्रत्यक्षतः, छिनिति काट कर खंड खंड कर दिया जाता है, अनिमिषाय मतलब नित्य काल द्वारा, नमः नमस्कार अस्तु यानी हो तस्मै, नमोस्तु तस्मै. लेकिन आप जीवों की समस्त योजनाओं को काल के प्रभाव से, ये सब योजनाएं जो हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे सुखी हो जाएंगे, वो सारी योजनाएं जो हैं वो हमारी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि हम भगवान के उपदेशों की लापरवाही करके अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं. और कितना भी बता दिया जाए ना जीव को, फिर भी उसको यही लगता है कि नहीं, ये करने से ही तो, ये तो करना पड़ेगा, वरना तो मज़ा कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा. इसी में तो भौतिक जगत में रहना है, तो फिर हमको इसी तरह से आनंद प्राप्त करना है. भगवान ने कह दिया अनित्यम असुखम लोकम, कुछ सुख नहीं है इस संसार में, क्या ढूंढोगे? जिस भगवान ने बनाया है उसने लिख कर दे दिया, फिर भी बोलेंगे नहीं ये करेंगे तो ही सुख मिलेगा, खाली भक्ति से कुछ नहीं होगा. तो शिल अनुवाद देखिए, सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते. जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी. अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं. श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर इस श्लोक का तात्पर्य बताएंगे. हम सब ध्यान से इन शब्दों को समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य लोग निरर्थक कार्यों में लगे हुए हैं, वे असली लाभप्रद कार्यों के प्रति जो भगवान की भक्ति है और पारिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं बिल्कुल लापरवाह बने रहते हैं. अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं भगवान ने नारद पंचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है. जो यह बलि भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन भगवान विष्णु तक पहुंचना है जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है, भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि उनका निजी हेतु विष्णु अनुभूति में है. अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे इसी बात को कि भगवान के आदेश के किस तरह से भगवान की अर्चना की जाए. तो भगवान ने नारद पंचरात्र एक शास्त्र है, उसमें साफ साफ बताया है कि आपको यदि अपने जीवन को सफल करना है तो इस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उस उस शास्त्र में कैसे लिखा हुआ है, जैसे हम करते हैं, यानी जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशों अनुसार हम मंगल आरती करते हैं, संध्या आरती करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये सब नारद पंचरात्र में दी गई विधि है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन होता है। हम देखते हैं जितने भी भक्त हैं वो कड़ाई से बहुत ही डिटरमाइंड होकर ये सारी विधियों का पालन करते हैं, जो यह बलि भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन भगवान विष्णु तक पहुंचना है। वास्तविक बात जो है वो ये है कि हमको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर संसार में ही हम निरर्थक कार्यों में लगे रहेंगे तो फिर भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। और ना केवल नारद पंचरात्र में, श्रील प्रभुपाद जी कहते गीता और भागवतम में भी विधान, ये सारे विधानों का उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग तो जानते ही नहीं है कि उनका रियल जो हित है, उनका लाभ क्या है, भगवान विष्णु प्रसन्न करना है। तो वो कैसे हैं, श्रीमद् भागवतम 7.5.30 से 32 तक ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं जो प्रहलाद महाराज जो हैं वो कहते हैं। वे कहते हैं माते न कृष्णे परत स्वतोवा मिथो विपत्तीत गृही गृहव्रत नाम आदंत गोभिर विशताम तिमस्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाणाम नाते विदुस्वार्थगतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनम् अंधायथान्धय उपनीयमाना तेपीशतंत्या मरुदाम निबद्धा नैशाम मतिस्ता वधुरुक्रमंग्री स्पर्शत स्पष्ट्य नर्या नर्थापगमो यदर्थ महीय संपा दरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीतयाव मतिर्न कृष्णे परतस्वतोवा। जब तक भगवान के चरणों में हमारी मत्ती नहीं लगती है, तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह से सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, वो जो सोचते हैं कि भले कुछ भी हो जाए हमको इस संसार में ही भौतिक सुख प्राप्त करना है, भले वो इन्हें जिद पकड़ लेते, कटिबद्ध हैं, मतलब वो बस सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको करना यही है। तो मिथो भी पद्येत गृह वर्ताना कि उनको वे ना तो शिक्षकों के उपदेश द्वारा, ना आत्म साक्षात्कार द्वारा, ना ही श्रेष्ठतापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि प्रहलाद महाराज तो कितने शुद्ध भक्त थे, अब शुद्ध भक्त जब उपदेश करते हैं तो हमारे मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। अब प्रहलाद महाराज ने कितनी बार अपने पिता हिरण्यकशिपु को ये शिक्षा दी थी, कितनी दफा बताया था कि जीव का कल्याण केवल भगवान की भक्ति का, लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि साक्षात महाजनों में से एक हैं, उन्होंने भी हिरण्यकशिपु के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सका, है ना। क्यों? क्योंकि जो ये बात पूरी तरह से जड़ पकड़ के, पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, जिद पकड़ी हुई है कि भाई हमको वही करना है जो हम चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आप सबको समझा सकते हो, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते उसको भला कैसे समझाएंगे। लेकिन समझाने के लिए वो समझने वाला जो है, वो समझने के लिए पहले एग्री तो हो, लेकिन इस संसार के लोग जो है ना, वो हमारी बात सुनने के लिए हृदय से एग्री नहीं होते। तो फिर जो जो चाहता नहीं है ना कि हमें भक्ति करनी है,
उनके साथ क्या है, वे ना तो शिक्षकों के उपदेश द्वारा, चाहे ऐसा बताते हैं शास्त्र, मूर्ख हृदय न चेतिए जे गुरु मिले विरंची समान। साक्षात ब्रह्मा है ये, साक्षात ब्रह्मा बता रहे हैं। साक्षात ब्रह्मा जी भी यदि उनको आकर उपदेश दें तो भी उनके हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा न आत्म साक्षात्कार के द्वारा, और ना ही खुद देख रहे हैं संसार में कितने बड़े बड़े आए हम जैसे, और वो सब मर मिट कर चले गए, कुछ लेके भी नहीं गए, और जितना जितना संसार में कमाया वो सब यहीं पर छोड़ के गए, तो भी उनको अक्कल नहीं आती है। ना ही शिष्टतापूर्ण विचार विमर्श, उनके साथ बैठ के जितनी भी बातें करो, उनको समझाओ, उनको कृष्णोमुख विमर्श के द्वारा कृष्णोमुख हो नहीं सकते हैं। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। आदंत गोभिर विषताम तमस्रम, शुरू से लेकर अंत तक केवल अपनी इंद्रियों को ही आनंदित करना चाहते हैं, और पुनः पुनः शर्वितम चरवणानम, और चबे हुए को संसार के ये सारे सुख जो हैं वो सब टेस्टलेस हैं, कुछ भी स्वाद नहीं है इनके अंदर। पहले भी आज ऐसा नहीं है कि जो आज आपको अच्छा लग रहा है वो आपको पहली बार मिला है, हजारों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों बार ये सारे सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, सेक्सुअल सुख, सोने का सुख, जितने भी सुख है ना वो सब हम भोग चुके हैं, और सबका रस समाप्त हो गया है। अब भी हम यदि चबे हुए को चबाकर पुनः आनंदित होना चाहते तो उससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। और यहाँ बता, और इस तरह वे चबे हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते, पता है नहीं आ रहा है आनंद, एक बार नहीं आता फिर करके देखते, फिर नहीं आता फिर करके देखते। कब तक अगर हम अपने जीवन को इसी तरह से सर्वनाश करते रहेंगे, जो सुख आज हम सोच रहे हैं ना इसको प्राप्त करने के बाद मुझे आनंद मिल जाएगा, वो सुख हम पहले भी करोड़ों दफा प्राप्त कर चुके हैं और फिर उससे आनंद नहीं आया है, आज फिर वही गलती कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रही है। न ते विदु स्वार्थ गते हे विष्णु, वो ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, और इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है। दुराशराये बहिरर्थमानी, ये भौतिक जीवन की गलत धारणा है कि हम संसार से सुखी हो सकते हैं, जो बहिरंग शक्ति के अधीन है। ये बहिरर्थमान है, यानी ये सब बहिरंग शक्ति का ही खेल है जो हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। अंधा यथान्धेर उपनीय माना, यानी उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों खंडक में जाकर गिरते हैं, यानी कि उनको फिर वो ऐसे ही गुरु का भी हाथ पकड़ते हैं। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जब आपको अपना मार्गदर्शक जो है वो चुनना हो ना, तो देखा करो कि उसकी दोनों आंखें सही हैं या वो भी मेरी तरह से अंधा है, उसको भी पता नहीं है कि भगवत भक्ति या भगवान की प्राप्ति का कौन सा रास्ता है। तो यहाँ साफ साफ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। कोई भी साधारण सा व्यक्ति आकर बोल जाता है, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना साक्षात गुरु ही भगवान होता है, मेरी पूजा करो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर वो उसी को ही सब कुछ मानते। अंधा यथा अंधे उपनीय माना, तो जिस तरह यदि अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखाता है तो दोनों ही खंदक में जाकर गिरते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम भले अंधे हैं, हम भले अज्ञानी हैं, हम भगवत प्राप्ति के लिए समझ नहीं पा रहे हैं रास्ते को, लेकिन हाथ किसी ऐसे सतगुरु का पकड़ेंगे जो वास्तव में समस्त इच्छाओं से, समस्त आकांक्षाओं से रहित है, और उसे पता है कि उनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्ति के कार्यकलापों की ओर जो कि उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों की को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले हैं, आकर्षित नहीं हो सकते। नैषाम मतिस्ता वद उरुक्रम अंग्री, वो भगवान के चरण कमल जो कि समस्त जीवों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और जो उनके ऐसे मूर्ख लोग जो उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले हैं, आकर्षित नहीं हो सकते हैं, कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती है कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं। यहाँ साफ साफ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, श्लोक में भी लिखा हुआ है, माही यसाम पादर जोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणितयावत। वो ये सोच भी नहीं पा रहे, उनके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है। यहाँ साफ बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो, ऐसा कोई महात्मा जो कि भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से मुक्त हो, जो अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता, ऐसा महात्मा ही आपको भगवान तक लेके जा सकता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्ति परक कार्यों को त्यागने और अर्चना कार्यों में या भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने के लिए आदेश देते हैं, किंतु ऐसे अर्चना कार्य को और प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता में तो भगवान ने क्या कहा है, मय्यावेश्य मनो ये, अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दो, मत चित्ता मत गधा प्राण, अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दो, मुझसे इतना प्यार करो कि मेरे बगैर जी न सको, मत गधा प्राण, मन मना अपना मन मुझे दे दो, मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। भगवान ने कितना साफ साफ बताया है कि मैं ही तुम्हारा वास्तविक सुहृद हूँ, तो मुझसे अपना संबंध जोड़ो, किंतु ऐसे अर्चना कार्य की ओर प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता। कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि भगवान की भक्ति से ही जीवन का उद्धार हो सकता है, कितने लोग हैं जो भगवान के वाक्यों को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और दूसरे कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। हर कोई चाहता है संसार में सुखी होना चाहता है ना, भगवान ने बोल दिया भाई तुम मेरे पास आओ स शांति मापनोति, फिर मैं तुम्हें सुख दूंगा, शांति दूंगा, आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, आपको आपको कभी दुखी होने नहीं दूंगा, कभी भी आपके ऊपर संकट आने नहीं दूंगा। लेकिन भगवान के पास कौन जाता है? हर कोई जीव जो है वो विद्रोहात्मक कार्य करता है, अर्थात भगवान की बात नहीं मानता। तो ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। भगवान ने जब बोल दिया कि आपको मेरी भक्ति करनी है, भक्त्यामान अभिजानति, केवल भक्ति के द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हो, केवल मुझसे प्रेम करके आप मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर भक्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान और योग साधना जो है वो भी वास्तव में भगवान के आज्ञा का विद्रोह ही तो है। तो भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है, जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है अन्यथा नहीं। मतलब कुछ लोग जो हैं वो ज्ञान और हम? कितना साफ साफ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है। कभी कभी बोला जाता है कि भाई ज्ञान और योग जो है वो भी अर्चना ही है, लेकिन कब, जब उसका लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता। आज जो जो लोग योग साधना करते हैं उनको उनका कोई लक्ष्य ये थोड़ी होता है कि हम भगवान को प्राप्त करें, वो तो केवल अपने शरीर के फिटनेस के लिए योग साधना करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके कोई भगवत प्राप्ति के लिए आगे नहीं जाता, केवल अपनी बुद्धि को तेज करना चाहता है। तो वास्तविक लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है अन्यथा नहीं। तो निष्कर्ष यह है कि एकमात्र भगवत भक्ति ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है। यदि मुक्ति चाहिए, यदि भगवत प्राप्ति चाहिए, तो फिर सिर्फ भगवत भक्त के लिए ही वो संभव है। सिर्फ भगवत भक्त ही योग्य प्रामाणिक पात्र है। अन्य लोग व्यर्थ ही बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रहते हैं। जितने भी लोग हैं ना, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बिल्कुल बेकार कार्य कर रहे हैं। चाहे वो भौतिक दृष्टि से कार्य कितना ही लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी प्राप्त होगा वो सब जाया हो जाएगा, वो सब व्यर्थ चला जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ भगवत भक्ति, भगवान का नाम जो है वो हमारे साथ चलेगा, और वही भगवान का नाम और भगवान का प्रेम जो है वो हमें भगवान के धाम तक लेके जाएगा। यदि वो नहीं अर्जित किया तो फिर जन्म मरण के चक्कर में हमेशा घूमते रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम। बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे, और बार बार माता के गर्भ में जाकर दुखों को सहना पड़ेगा। तो बुद्धिमान वही है जो भौतिक वस्तुओं के पीछे लगने के बजाय भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को समर्पित होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ।